ये दिल्ली में चलाई गई प्रातः क्लास है 30 जनवरी 1963। रिकॉर्ड चला है आखिर वो दिन आया आज। आखिर वो दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकता था, जिसका था मोहताज। यहाँ इस गीत को समझने में बहुत सेंसिबल बुद्धि चाहिए। अभी बच्चों ने क्या सुना? सुना कि जिस दिन के हम मोहताज थे वो दिन आज आ गया। किसके मोहताज थे? सुख और शांति के मोहताज हैं भगत। सारी दुनिया शांति और सुख और शांति की मोहताज है। क्योंकि सतयुग त्रेता में कोई भी मोहताज नहीं होते और कोई भी बात के लिए मोहताज नहीं होते। तो अभी ये गीत है तो सही ना? उनकी याद में गाया हुआ है कि मोहताज से सिरताज कौन बनावे। अशांत से शांत कौन बनावे और दुखी से सुखी कौन बनावे। तो उसकी याद में ये गाते हैं। अभी गाते हैं कि आखिर वो दिन आया जो आकर के हमको मोहताज से सिरताज बनाते हैं, दुखी से सुखी बनाते हैं, अशांत से शांत बनाते हैं, इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाते हैं और डेविल से डीटी बनाते हैं। इस दिन के मोहताज थे, बरोबर मोहताज हैं। जब कोई मरते हैं तो भी कह देते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबोड। पूछते हैं तुम्हारा संबंधी कहाँ गया, कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तो स्वर्ग को याद करते रहते हैं ना, अर्थात फिर भी स्वर्ग के रचयिता भगवान को याद करते हैं। परंतु वो भगवान कौन है, वो कब आएंगे, वो भगवान क्या चीज है, बिचारों को कुछ भी पता नहीं है। गीता, वेद, उपनिषद, शास्त्र ग्रंथ ये सभी ने बैठ करके ज्ञान का सूत मुझाई दिया है। बिचारे बहुत मुझे हुए हैं तो मुझने वालों को समझाने वाला जरूर चाहिए। اور مجھتے کون ہیں؟ مجھتے ہیں بے سمجھ، بہت ہی بے سمجھ ہو گئے، جتنے ہی شاستر پڑھے، جتنے اپنشد پڑھے اور جتنی یہ نئی نئی گیتا بنائی، نئی نئی گیتا بنائے کر پڑھتے گئے اور جتنا بیٹھ کر کے ان گیتاؤں کا انیک پرکار کا ارتھ بنایا، اتنا ہی اور جاستی مجھتے گئے. اب بتاؤ کتنی گیتائیں ہوں گی؟ ایسا دنیا میں کوئی اور شاستر نہیں ہے جس کو اتنا بیٹھ کر کے سمجھنے کے لیے کوشش کی ہے. کتنی گیتا کی ٹیکائیں کی ہیں، پرنتو ان ٹیکاؤں میں جتنا سمجھایا ہے، جتنی گیتا بنائی ہیں اتنے ہی مجھتے گئے ہیں. کوئی کہہ دیتے ہیں کلپ کی آئے بہت بڑی بڑی ہے، مکھی بات اس میں ہی مجھتے ہیں. کوئی کہتے ہیں گیتا دواپر میں سنائی گئی، کوئی کہہ دیتے ہیں کہ کرشن بھگوان نے گیتا سنائی، ان کرشن کو بھگوان بھی کہہ دیتے ہیں. کبھی کہہ دیتے ہیں نہیں، ایشور تو ہے، ہاں کرشن میں سے بھگوان نکل آیا. کوئی کہتے ہیں کرشن میں سے بھی بھگوان نہیں نکلا، بھگوان نے کرشن کا بھی رتھ نہیں پکڑا. یہ بھی تو جھوٹ بات ہے. تو بہت مجھے ہوئے ہیں اور بالکل مجھے گئے ہیں. ایک تو شاستروں سے بہت مجھے تنگ کیا شاستروں نے، بیٹھ کر کے سب کو مجھایا، بڑا تنگ کیا ہے. دوسرا پھر مایا نے تنگ کیا ہے، اور مایا نے تو 2500 سال بہت تنگ کیا، بہت دکھی بنایا ہے. باپ بیٹھ کر کے سمجھاتے ہیں کہ سب سے جاستی جو پوائنٹ تنگی کی ہے وہ کون سی ہے. بھگوان کس کو کہا جائے، یہ سب سے جاستی تنگ کرنے کی بات ہے. ابھی بھگوان آیا ہوا ہے، ابھی بھی بہت تنگ ہوتے رہتے ہیں کہ بھگوان کس کو کہا جائے. یہ پہلی بات ہے سمجھنے کی، بھگوان ہے کون، अगर सर्वव्यापी कह देते हैं, अच्छा वो भक्त तो सर्वव्यापी करते आए, परंतु कोई को पता तो नहीं है ना, कुछ भी पता नहीं है। ये तो करते आए हो, परंतु उससे कुछ फायदा तो मिलता नहीं है। भगवान को सर्वव्यापी किया, कहा तो बुद्धि और ही भटकती गई। कोई मंदिर में गए, कोई मस्जिद में गए, कोई गुरुद्वारे में गए, कोई गिरजाघर में गए, कोई तीर्थों में गए, कुछ भी फायदा नहीं मिला। और भारत तो और ही रसातल में जा रहा है। बल अगर बैठ करके ये फॉरेनर्स से राजी लिया है, उसके बाद भी और ही तंग हो गए। नहीं तो कोई की ताकत थी, थी ही नहीं ताकत। जो भारत के ऊपर चढ़ाई करे, जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज्य था, दुनिया में कोई की ताकत नहीं थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर चढ़ाई कर सके, बिल्कुल नहीं। न चीन न पाकिस्तान, कोई की भी ताकत नहीं। बिल्कुल सेफ थे। अच्छा अभी तो सेफ्टी भी चली गई। दिन प्रतिदिन जिसको स्वराज कहा जाता है और जिसका नाम रख दिया है नया भारत, नई दिल्ली, नवयुग। देखो नाम कैसे कैसे रख देते हैं। नवभारत टाइम्स अखबार भी निकलता है, नवयुग अखबार भी निकलता है। कह देते हैं न्यू दिल्ली, पुरानी दिल्ली, वो दिल्ली बदल करके और थोड़ा नया मकान बनाई दिया, बस सारी दिल्ली नई हो गई, सारी दिल्ली लाल पत्थरों की बनाई दी। पुरानी तो ज्यों की त्यों पड़ी है। अरे न्यू दिल्ली तो तब कहें जब पुरानी का विनाश हो जावे। अभी वो पुरानी दिल्ली तो विनाश नहीं हुई है ना, तो नई नई कहते रहते हैं। अभी बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, हे लाडले बच्चे, जब नई सृष्टि थी जिसको सतयुग कहेंगे और तो कुछ नहीं कहेंगे ना, नई सृष्टि को ही सतयुग कहेंगे। नई सृष्टि में नया भारत था, जिसको आज भी प्राचीन भारत कहा जाता है, वो हो गई नई सृष्टि, नया युग। और फिर उसमें नई दिल्ली थी, उस नई दिल्ली को परिस्थान कहा जाता था। नई सृष्टि में भारत ही नया होता है, और दुनिया में जो भी खंड होते हैं, कभी भी नई सृष्टि में ऐसे नहीं कहेंगे कि नई सृष्टि में क्रिश्चियन खंड था या अमेरिकन खंड था या बौद्ध धर्म खंड था। नहीं, नई सृष्टि में सिर्फ नया भारत था। अभी कोई भी नहीं कहेंगे कि नई सृष्टि में कोई और खंड होगा, तो बिल्कुल ये समझ की बातें हैं ना। नई सृष्टि में नया भारत खंड था। तीस एक तिरसठ की वाणी का दूसरा पेज, और कोई खंड था ही नहीं, न बौद्ध खंड, न क्रिश्चियन खंड, न इस्लामी खंड। मुख्य तो एक है, बाकी तो है मल्टीफिकेशन, तो उनका क्या वर्णन करेंगे। अच्छा, ये भारतवासी बच्चे जानते हैं कि नई सृष्टि में, नए भारत में बरोबर श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उन लक्ष्मी नारायण को देवी देवता कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है। परंतु उनको हिंदू तो नहीं कहा जाता, लक्ष्मी नारायण को हिंदू कहा जाएगा, ऐसे तो कभी कोई नहीं कहेंगे। ये लक्ष्मी नारायण हिंदू हैं, इन्हें कहेंगे देवी और देवताएं। भारत में देवी देवताएं, तो उनका संबत भी होना चाहिए। देखो, क्रिश्चियंस का भी संबत है, बौद्धियों की भी एनिवर्सरी बरसी मनाते हैं, समय तो देते हैं ना। बरोबर कल्प की आयु का किसको समझाने का बाबा राज बताते हैं कि अच्छी तरह से समझाओ। बेचारे बहुत मुझे हुए हैं। अभी राज दुनिया तो नहीं जानती है, तो इस राज को जरूर दुनिया का मालिक बताएगा। क्योंकि इस 2500 वर्ष की हिस्ट्री में सारी दुनिया का मालिक तो कोई बन ही नहीं सका। हिंसक युद्ध से कोई दुनिया का मालिक बन जाए, ये हो ही नहीं सकता। ये बातें और कोई थोड़े ही बताएगा। तो पहले तो ये भी नहीं जानते थे, अभी बैठ करके समझाते हैं बच्चों को, क्योंकि ये है डिटेल की समझानी। नहीं तो जिन विचारों की बुद्धि कमजोर है उनके लिए तो सिर्फ कहा जाता है बच्चियों तुम बेहद के बाप को याद करो, क्योंकि वो स्वर्ग को रचने वाला है, हेवन रचने वाला है, बैकुंठ रचने वाला है। तो तुम अपने बैकुंठ को याद करो, अथवा तो विष्णुपुरी को याद करो। मन मन मना भव माद्यादि भव, अपने बाप को याद करो, शिव बाबा को याद करो, विष्णुपुरी को याद करो। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है ना, बोलते हैं बच्ची तुम तकलीफ जास्ती नहीं कर सकती हो, अगर नहीं कर सकती हो तो ये सारी बातें याद करो, बाकी कोई डिटेल में समझाने वाला हो तो फिर उनके लिए समझाया जाता है कि बरोबर संबत तो इन लक्ष्मी नारायण का भी है, संबत बौद्धियों का भी है, इस्लामियों का भी है, और इन सब की तो बात छोड़ दो, छोटों छोटों को छोड़ दो। अभी भारत में लक्ष्मी नारायण है, अगर इनको हिंदू भी कहा जाता है, कह देते हैं आदि सनातन हिंदू, तो संबत तो बताओ, इनका कोई संबत तो होना चाहिए। संबत होना चाहिए या संबत होना चाहिए, संबत समझते हो तो ना। अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है, संबत को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, सन। हिंदू धर्म की संबत बताओ, क्या किसी को मालूम है? क्यों ये मालूम नहीं होना चाहिए, हिंदू धर्म का भी तो संबत होना चाहिए ना। कोई भी संबत नहीं है, जो इनका सिजरा होता है इसको पंडे लोग टिप्पणा कहते हैं ना, क्या कहते हैं, द्वापर वाला विक्रम संबत। तो क्या इसको हिंदू कहें, यानी हिंदू तब से शुरू हुए, तो फिर क्यों कहते हैं सतयुग की आयु अरबों बरस, जरूर संबत होना चाहिए ना। बरोबर नई दुनिया में भारत खंड, उसमें भारत नया था, उसमें देवी देवताओं का राज्य था, अभी उनको आयु देनी चाहिए ना, सतयुग और त्रेता को आयु देनी चाहिए। स्वर्ग रचा जाता है गीता से और गाया जाता है बरोबर कि गीता में लिखा हुआ है जो युद्ध के मैदान में मरेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे। तो जरूर है कि गीता से स्वर्ग की स्थापना होती है, देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। फिर अगर उनको हिंदू कहें परंतु हिंदू धर्म तो होता ही नहीं है। हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है। अगर कहते हैं हिंदू धर्म तो हिंदू धर्म की भी तो आयु होनी चाहिए ना। कोई भी नहीं बता सकते हैं, अभी बाप बैठ करके बताते हैं क्योंकि ये भी बोलता है। कौन? ये ब्रह्मा भी बोलता है कि पहले हम भी नहीं जानते थे, अब बाप बैठ करके समझाते हैं तो उनको तो गिनेंगे ना बरोबर। गीता को 5000 वर्ष हुआ, क्योंकि अगर गीता को हम द्वापर में ले आवे तो द्वापर में तो हिंदू धर्म नहीं स्थापन हुआ। देवताएं द्वैत होते हैं या अद्वैत होते हैं? द्वैत से द्वापर बनता है। जहां दो दो धर्म होते हैं, दो दो राज्य होते हैं, दो दो कुल होते हैं, हर बात में द्वैत चलता है, तब कहा जाता है द्वापर युग। तो अगर हम गीता को द्वापर में ले आवे तो साबित होता है कि द्वापर में स्वर्ग नहीं स्थापन हुआ। स्वर्ग में तो अद्वैत देवी देवताओं का राज्य था। द्वापर में देवी देवताएं तो नहीं थे, द्वापर में तो वो लोग आए हैं। कौन लोग? जिन्हें विधर्मी कहा जाता है, जिन्हें विदेशी कहा जाता है। तो तुम लोगों को कल्प किया है वो 5000 वर्ष पहले बतानी चाहिए तो कोई भी समझे कि बरोबर सिवाय परमपिता परमात्मा के ये समझानी तो कोई भी नहीं दे सकता। क्योंकि वो कहते हैं मैं इस पुराने तन में आता हूं, जिनकी आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पुरानी से पुरानी आत्मा है। आत्मा पुरानी होती है तो शरीर भी पुराना हो जाता है। अब ये क्या जानते होंगे? ये तो और ही पुराना तन है। तो बाप बैठ करके समझाते हैं कि संबत तो चाहिए ना। कोई लक्ष्मी नारायण का संबत बतावे, बाप बैठ करके समझाते हैं कि अभी तुम तो समझते हो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण को कितना वर्ष हुआ, क्योंकि गीता से ही इस धर्म की स्थापना हुई है। गीता को 5000 वर्ष हुआ, और जो द्वैत पैदा करने वाले धर्म ग्रंथ आए हैं, धर्म आए हैं, धर्म पिताएं आए हैं, वो दुख की दुनिया में आए हैं, द्वापर युग में आए हैं। ये दुख की दुनिया दो युगों में चलती है, अंतिम दो युगों में। तो जरूर सुख की दुनिया दो युगों में चलती होगी, जो दो युग सतयुग और त्रेता से शुरू होते हैं। कल्प की आयु सतयुग आज से कहेंगे ना, भले इन्हें देवी देवता धर्म कहो या आदि सनातन हिंदू धर्म कहो, अब कोई बतावे कि हिंदू धर्म से आगे कौन था, कोई है? कोई धर्म नहीं है, है ही बस देवी देवता सनातन धर्म। वो देवी देवता गीता ज्ञान से निकले, भगवान ने ऐसा ज्ञान दिया जो नर से नारायण बने और नारी से लक्ष्मी बने। उन लक्ष्मी नारायण का शास्त्र ये है गीता, तो वो 5000 वर्ष हुआ, क्योंकि आधा सुख की दुनिया और आधा समय दुख की दुनिया। सुख में कोई दिन नहीं गिने जाते हैं, टाइम का कोई कैलकुलेशन नहीं करता है, और एक एक दिन करके कब गिनते हैं। टाइम का कैलकुलेशन कब करते हैं, जब दुख पड़ता है। तो दुख की दुनिया के सम्मत मिल रहे हैं सतयुग त्रेता, सुख की दुनिया का सम्मत लक्ष्मी नारायण का संबंध किसी के पास नहीं है। इससे साबित होता है कि सतयुग त्रेता सुख की दुनिया और द्वापर कलयुग है दुख की दुनिया। आधा टाइम है दिन, दिन में कोई भी ठोकरे नहीं खाते हैं। आधा टाइम है अज्ञान की रात, जहां भक्त ठोकरे ही खाते रहते हैं। कहीं मंदिर में जावेंगे, कहीं तीर्थों में जावेंगे, कहीं गुरु के पास जावेंगे, सारा जीवन ठोकरे खाते हैं। ये हुई अज्ञान की रात, दुखों की रात। तो आधा समय 2500 वर्ष है सुख की दुनिया सतयुग त्रेता, और फिर उसके बाद 2500 वर्ष है दुख की दुनिया, द्वापर कलयुग। तो अब कोई बतावे कि कल्प की आयु बढ़ाने की क्या दरकार है। और फिर दूसरी बात कि बरोबर अगर आदि सनातन हिंदू धर्म है और उनको कोई बहुत ले आते हैं तो वो संस्था कहाँ है, हिंदुओं की सेंसस कहाँ है, हिंदुओं की तो सेंसस और कमती होती गई है। कौन से दूसरे मनुष्य हैं जिनकी ये बातें बतावे, तीस एक 63 की वाणी का तीसरा पेज। क्या आकाश में कोई है, पाताल में कोई है, क्या एक एक स्टार में कोई दुनिया है? नहीं, कोई भी दुनिया का वर्णन नहीं है। जिस चीज का वर्णन नहीं है वो है ही नहीं, ये तो समझ की बात है। कि दुनिया कहाँ पनप सकती है, जिंदगी कहाँ हो सकती है, इस पृथ्वी पर ही उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में कोई जिंदगी नहीं है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, सूर्य दूर हो जाता है, इसलिए इतनी ठंडी बढ़ जाती है कि वहां कोई भी जीव जंतु नहीं पनप सकता। जिंदगी होने के लिए निश्चित दूरी चाहिए सूर्य से, वो पृथ्वी का मध्य भाग और उत्तरी भाग, जिसे कर्क रेखा के आसपास का भाग कहा जाता है। और पृथ्वी का वो दक्षिणी भाग जो मकर रेखा के आसपास कहा जाता है, वहीं तक प्राणियों की जिंदगी है, उससे ऊपर या उससे नीचे कोई प्राणी नहीं पनप सकता। अभी तो साइंस ने ये बातें निकाली हैं तो बाप कहते हैं और स्टार्स तो सूर्य से कितने दूर हैं और कोई कितने नजदीक हैं, वहां जिंदगी कैसे हो सकती है? जैसे भक्त परमपिता के लिए कहते हैं कि उनका नाम रूप देश काल होता ही नहीं है, तो समझो कि भगवान होता ही नहीं, भगवान कोई चीज है ही नहीं। वैसे ही कोई भी और संस्था है ही नहीं, देवी देवताओं के बिगर डीटीज्म के बगैर और कोई संस्था नहीं है तो जरूर समझना चाहिए कि 5000 वर्ष गीता को हुआ, जबकि भगवान ने गीता ज्ञान दे करके बिगड़े हुए मनुष्यों को, बिगड़े हुए नर को नारायण जैसा बनाया, देवता बनाया। 5000 वर्ष स्वर्ग को स्थापन करने वाले शिव बाबा उनके अलावा और कोई भी नहीं है। अभी शिव जयंती की भी तो संबत चाहिए ना, तो शिव की जयंती कब मनाई जाए? जरूर बताएंगे 5000 वर्ष पहले। परंतु जयंती साकार की होती है या निराकार की होती है? जयंती तो साकार की ही होती है, और दुनिया के और धर्मों के लोग भगवान को निराकार मानते हैं। जैसे कि वो तो जानते ही नहीं कि भगवान कुछ करता धरता है, वो नहीं जानते हैं। उसका कारण ये है कि वो 2500 वर्ष के अंदर आए हैं और धर्म पिताओं की संतान है। परम पिता परमात्मा भगवान की संतान डायरेक्ट नहीं है, इसलिए वो नहीं जानते हैं कि भगवान साकार में आकर सारा कार्य करता है। जैसे आत्मा भी निराकार होती है परंतु साकार शरीर धारण करके सारा कार्य करती है। अंतर सिर्फ इतना है कि आत्माओं को अपना शरीर होता है और भगवान को अपना शरीर नहीं होता है। तो जरूर कहेंगे कि 5000 वर्ष पहले भगवान ने शरीर धारण करके जयंती अर्थात जन्मदिन काबिज किया और संगम युग पर ही हुआ। संगम युग अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग का आदि, ऐसे ही कहेंगे ना। अभी संगम युग का तो कोई आयु निकालना नहीं है क्योंकि ये तो बीच का समय है ना। ये सतयुग और कलयुग का संगम है क्योंकि देवताओं का संबंध तो स्वर्ग से शुरू होता है और भगवान ने आकर के संगम युग में राजयोग सिखाया, राजाई प्राप्त कराने के लिए। तो ये देवताओं का संबत राजाओं से शुरू होता है, तो कहेंगे लक्ष्मी नारायण से संबत शुरू हुआ। नाम भी रखते हैं आदि नारायण, अगर कोई आदि नारायण है तो जरूर कोई मध्य और अंत नारायण भी होंगे। तो लक्ष्मी नारायण से संबंध शुरू होता है, जिसको कहा जाता है न्यू वर्ल्ड, नया युग, नया भारत, नई बादशाही भी उनको कहेंगे। और वो बादशाही कहाँ होती है? मुसलमानों से पूछो परिस्थान कहाँ, कहेंगे दिल्ली। धर्मराज ने दिल्ली को परिस्थान बनाया। दिल्ली को बहुत बदलाया है। अव्यक्तवाणी में भी क्या बोला दिल्ली के लिए है? दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार हो जाता है। कितना बदलाव आना है दिल्ली में। ये दिल्ली दुनिया की एक ही ऐसी राजधानी है जो बहुत धर्म वालों की गद्दी बनी है। सभी धर्म वालों ने इस दिल्ली की गोद में राज्य किया है और मनमाना राज्य किया है। एक था नादिर शाह, दिल्ली के चांदनी चौक में जाकर उसने खून की नदियां बहाई थी। पहले तो ये दिल्ली देवी देवताओं का राज्य था, देवी देवताओं की गद्दी थी। तो उनके बाप दादा जरूर बड़े से बड़े कुल वाले होंगे। अच्छे कुल वाले, पवित्र कुल वाले थे। उनकी भी गद्दी यहां थी। तो ऑटोमेटिकली गद्दी को लेकर के इन सभी धर्म वालों के ऊपर बड़ी चटाबटी लगी रहती है। कि दिल्ली हमारी राजधानी भी बने, फिर इनके ऊपर बड़ी लड़ाइयां वगैरह हुई हैं। अभी समझा ना कि भारत के आदि सनातन देवी देवता धर्म की आयु क्या होनी चाहिए। अभी 5000 वर्ष से कुछ बाकी बचा। जो कुछ वर्ष कम होते हैं बस वो ही आयु है, यानी सृष्टि की आयु। फिर यही बताया जाता है कि टोटल 5000 वर्ष। इसमें इन्हीं धर्मों को, इन्हीं युगों को फिरना है। और तो कोई भी युगों का नाम निशान नहीं है। है कोई शास्त्र? या कोई भी शास्त्र में है कोई ऐसी बात जिसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग चारों युगों का वर्णन हो? वो शास्त्रकार तो संगम युग को भी भूल गए हैं। वास्तव में कहां भी ये संगम युग लिखा हुआ नहीं है। तो कहां है वो ब्रह्मा जिस ब्रह्मा से पहले पहले ब्राह्मण धर्म रचा गया, जो ब्राह्मण फिर देवता बने, जिन ब्राह्मणों से देवता बने इसको कहते हैं ब्राह्मण धर्म। किन ब्राह्मणों से देवता बने? बेसिक नॉलेज लेने वाले ब्राह्मणों से देवता बने या ऊंचे से ऊंची एडवांस नॉलेज लेने वालों से देवता बने? ये आस्पीशियस धर्म है। आस्पीशियस युग है, फिर लड़ाई भी बड़ी प्रसिद्ध है। महाभारी महाभारत लड़ाई आस्पीशियस लड़ाई है। वो जो हथियारों की लड़ाई होती है उनको फिर कभी भी आस्पीशियस लड़ाई नहीं कहा जाता। इस हिंसक युद्ध को आस्पीशियस लड़ाई कहेंगे क्या? दिखाते हैं कि यादव और कौरव आपस में लड़े नहीं, वास्तव में वो भी नहीं लड़े। कैसे लड़े? भला किस चीज से लड़े? लड़ने के लिए कोई चीज है क्या? वो तो दिखाते हैं कि उनको तीर मारते थे, अर्थात बाण मारते थे। माओ ने उनका हाथ घुमा दिया तो वो बोला उनको तीर मारो। अभी तुम बच्चे तो समझते हो कि यहां कोई तीर आदि की बात नहीं है। अभी तो लिखते भी हैं, शास्त्रों में लिखा है ना कि उन्हें यादवों के पेट से मूसल निकले। अभी वास्तव में मिसाइल्स बनाए हैं, उन्हें यादव जिन्होंने मिसाइल्स बनाए हैं उन्हें कहा जाता है रशियंस और अमेरिकन्स। परंतु वो बात यहां नहीं है। यहां तो ज्ञान बम्स की बात है। तुम जानते हो कि दुनिया को पलटने वाला बड़े से बड़ा बम्ब है कौन सा? परमात्मा प्रत्यक्षता बम। अभी तीर को की तो बात ही नहीं है। या तो सभी ज्ञान के शस्त्र हैं, ज्ञान के बाण हैं, परंतु शास्त्रों में तो देखो क्या क्या लिखा हुआ है, मुझारा हो गया ना। तो बाबा कहते हैं ये सभी जो वेद ग्रंथ शास्त्र जो भी वगैरह वगैरह हैं, इन्होंने और इन्हों के सुनाने वालों ने बिल्कुल ही तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान का सूत मुझाए दिया है। अभी तुम कुछ भी नहीं समझते हो, कोई भी बात को नहीं समझते हो, न समझने के कारण सारे भारतवासी नास्तिक बनते जा रहे हैं। दुनिया में अनेक मतें हो गई, अनेक मानव मत मत मतांतर हो गए, तो कहने लगे तुंडे तुंडे मतर भिन्ना, जितने जितनी दुनिया में मनुष्यों की खोपड़ियां हैं, 500 करोड़ खोपड़ियों में 500 करोड़ मत भरी हुई है। एक नई मानव मत निकली, कल बाबा ने सुना कि मनुष्यों ने बैठ करके एक मानव मत बनाई है, कहेंगे ये मानव मत है, कोई जानवर मत थोड़े ही है। न जानवर मत कहेंगे और न इसे देवता मत कहेंगे, और देवताओं से भी ऊंच कौन होता है, भगवान, और भगवान की भी मत नहीं कहेंगे। मानव एक दो को मत देते रहते हैं। किसी ने कहा मानव धर्म, अच्छा मानव धर्म सो तो मनुष्यों का ही धर्म है ना। अभी सारी सृष्टि पर मानव मत ही तो हो, मानव मत ही तो है ना। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, शंकराचार्य, गुरु नानक मानव ही तो थे ना, कि देवताएं थे या कि भगवान थे या कि जानवर थे। अब इन्होंने निकाली मानव मत। अरे ये मानव अर्थात मनुष्यों के द्वारा स्थापन किए हुए इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन धर्म आदि कोई शैतानों का धर्म थोड़े ही है। जानवरों का धर्म थोड़े ही है, मानव धर्म तो कहेंगे ना। फिर ये कौन सा मानव धर्म निकल पड़ा? तो बस देखो मनुष्यों ने कितना उठाया है। उनके पीछे फॉलो करने लग पड़े, इनकी बड़ी संस्था बन जाएगी। कोई समझे या न समझे, अब ये क्या मत देते होंगे। इस मानव मत को बैठ करके एक गीता तांबे पर छपाई है। अभी पता नहीं है वो गीता कब बनाई और किसने बनाई, उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ, किसको पता नहीं है। तो देखो ये सब बेचारे जरूर लड़ाई वाले हैं। इस समय बाबा कहते हैं मुझे तो इन लड़ाई लड़ने वालों के ऊपर बहुत रहम आता है, इनको जन्म बाई जन्म जब से दुनिया में लड़ाइयां शुरू हुई हैं, उनको कहा जाता है कि गीता में लिखा हुआ है जो लड़ाई के मैदान में युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जावेंगे। अब 2500 वर्ष के अंदर कोई स्वर्ग में गया क्या? अगर स्वर्ग में इतने गए जो लड़ाइयों में मरते रहे तो इस दुनिया की आबादी कम होनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? फिर आबादी कम हुई क्या? तो वो बेचारे मरते रहते हैं अपने राजा के लिए, अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए, अपनी प्रजा के लिए मरते रहते हैं, अपने आप मरते हैं दुश्मनों से बचाने के लिए। अब सतयुग त्रेता में तो कोई दुश्मन होता ही नहीं है, बल्कि सतयुग त्रेता द्वापर में भी भारत का कोई दुश्मन नहीं होता है, द्वापर के अंत तक भी कोई विदेशी ने भारत पर आक्रमण नहीं किया। पहला आक्रमण भारत पर हुआ है जो कलयुग की आयु बताई जाती है 1250 वर्ष, उससे कुछ पहले विदेशियों ने आक्रमण किया। उस विदेशी का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। इससे पहले भारत में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बाप बैठ करके समझाते हैं बच्चे तुमको उन सिपाहियों के ऊपर रहम आता है जिन्होंने ये इतनी लड़ाइयां लड़ी। बेचारे जन्म बाई जन्म इस आशा से हिंसक लड़ाइयां लड़ते रहे कि हम स्वर्ग में जाएंगे और लड़ते रहते हैं। अभी इस समय बाप जानते हैं कि ये वही स्वर्ग में जाने का समय आया हुआ है। इन सब का अभी कल्याण होना चाहिए, उन सब की अभी आशाएं पूरी करनी चाहिए जो हिंसक युद्ध में इसी आशा को लेकर के मरते रहे कि हम युद्ध में लड़ते लड़ते मारे जाएंगे तो स्वर्ग में जावेंगे। अभी बाप आकर उनको सच्चा रास्ता बताते हैं। कहते हैं इनका भी तो कल्याण होना चाहिए, तो वो अहिंसक युद्ध यही है। जिस अहिंसक युद्ध में लड़ाई लड़ते लड़ते जो अनिश्चय बुद्धि होकर के भी मरेंगे तो तो कहाँ जावेंगे? वो भी स्वर्ग में जावेंगे। परंतु किसी को पता नहीं है कि वो बेचारे कैसे स्वर्ग में जावेंगे, हिंसक लड़ाई से जावेंगे या अहिंसक लड़ाई से जावेंगे। ये माया की अहिंसक लड़ाई है, हिंसक युद्ध नहीं है। तो देखो बाप को उन विचारों के ऊपर कितना रहम आता है। बाप बोलते हैं उन सब विचारों को एक भाषण देना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को तैयार होना चाहिए, नहीं तो बहुत तरस पड़ता है कि इन बच्चों ने भारत की कितनी रक्षा की है। हिंसक लड़ाइयां लड़ते लड़ते 2500 वर्ष तक भारत की रक्षा ही करते आए हैं। परंतु बिचारों को स्वर्ग नहीं मिला, अभी इनको स्वर्ग का रास्ता बताना चाहिए। जो रास्ता भगवान आकर के बताते हैं। अच्छा, ओम शांति।